ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अंतर्गत प्रत्यक्ष की ओर मनोनयन पत्र दर्ता किए 3487 उम्मीदवारों में से 5 लोगों के विरुद्ध उजूरी दर्ज। निर्वाचन में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ और विश्वासी बनाने के लिए केंद्रीय सुरक्षा समिति ने जिला सुरक्षा समिति को किया निर्देश। प्रत्यक्ष की ओर के उम्मीदवारी में महिला उम्मीदवारी 12% है, निर्वाचन आयोग द्वारा जानकारी। और अमेरिका ने नए आक्रमण किया तो सभी सैन्य क्षमता से जवाबी कार्रवाई करने का ईरान ने दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। चुनाव आयोग के अनुसार फागुन 21 गते को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन पेपर रजिस्टर करने वाले 3487 उम्मीदवारों में से 4 जिलों के 5 उम्मीदवारों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। आयोग के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराई ने बताया कि सुनसरी जिले के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 के एक उम्मीदवार के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। प्रवक्ता भट्टराई ने बताया कि आज सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक देश भर के सभी 165 निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित चुनाव अधिकारी के ऑफिस में 5 शिकायतें दर्ज की गई है। आज सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक अगर वह उम्मीदवार जिसका नामांकन पत्र कल रजिस्टर किया गया है योग्य नहीं है तो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने का समय तय किया गया है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार चुनाव अधिकारी ने उम्मीदवारों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद समय सीमा के भीतर दर्ज शिकायतों का विवरण प्रकाशित किया है। प्रवक्ता भट्टराई ने कहा कि आज दोपहर 3 बजे से कल शाम 5 बजे तक नामांकन पत्रों और शिकायतों की जांच और फैसला किया जाएगा। उम्मीदवारों की लिस्ट कल शाम 5 बजे से 7 बजे तक जारी की जाएगी। उम्मीदवारों के नाम वापस लेने का समय कल सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक तय किया गया है। आयोग के अनुसार उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट परसों दोपहर 1 से 3 बजे तक जारी की जाएगी और उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक दिए जाएंगे। सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था कमेटी को आने वाले प्रतिनिधि सभा चुनावों में पॉलिटिकल पार्टियों और कैंडिडेट्स के कैंपेन और प्रचार को ऑर्गेनाइज करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत और भरोसेमंद बनाने का निर्देश किया है। होम मिनिस्टर ओम प्रकाश अर्याल की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय सुरक्षा समिति की मीटिंग में चुनाव प्रोग्राम का कोऑर्डिनेट करने के लिए बनाए गए सभी संयंत्र को सक्रिय करने का फैसला किया गया है। होम मिनिस्टर के सचिवालय के मुताबिक मीटिंग में चुनाव कैंपेन के दौरान सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को कंट्रोल करने और इसकी मॉनिटरिंग को असरदार बनाने और अगर यह गैरकानूनी पाया गया तो एक्शन लेने का फैसला किया गया है। मीटिंग में निर्वाचन सुरक्षा योजना को लेकर चारों सिक्योरिटी एजेंसियों की तैयारियों का रिव्यू किया गया। फागुन 21 गते को होने वाले प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष चुनाव के लिए बड़ी पार्टियों ने महिला कैंडिडेट्स को तरजीह दी है। कानूनी तौर पर भले ही 33% महिलाओं को हिस्सेदारी पक्की हो लेकिन पार्टियों ने समानुपातिक और की आरक्षण सीट से मात्र 33% महिला प्रतिनिधित्व होने के हिसाब से दलों ने बंद सूची सौंप चुके हैं। कुल 165 सीटों के लिए होने वाली प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए 3484 का उम्मीदवारी पड़ा है जिसमें महिलाओं की संख्या बहुत कम है। निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भंडारी के मुताबिक प्रत्यक्ष की ओर महिलाओं का 12% उम्मीदवारी दर्ज हुआ है। इस साल का माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई आने वाले चैत्र 19 से 29 गते तक होने वाला है। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के आज जारी एग्जाम शेड्यूल के मुताबिक अनिवार्य अंग्रेजी विषय का परीक्षा चैत के पहले दिन 19 गते को होगा। परीक्षा उपनियंत्रक कक्षा 10 के विष्णु प्रसाद गेवाली के मुताबिक प्राविधिक विषय का परीक्षा 27, 28 और 29 को होगा। परीक्षा उपनियंत्रक मुताबिक चुनाव का दिन फागुन 21 गते तय होने की वजह से इसी पिछले साल के मुकाबले 12 दिन बाद होगा। पिछले साल इसी चैत्र 7 गते से हुआ था। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि रुकुमेली जनता की समृद्धि की आकांक्षा पूरा करने के लिए हम रुकुम पूर्व से उम्मीदवार बने हैं। आज प्रेस सेंटर नेपाल रुकुम पूर्व द्वारा रुकुम कोट में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने जिला का इतिहास, भूगोल, संस्कृति, जात जाति सभी के भावना से आधारित विकास का फ्रेम आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त किया। राजनीतिक रूप में मात्र न होकर विकास के दृष्टिकोण से भी समाजवाद का बीज रुकुम पूर्व से रोपने का उद्घोष करते हुए संयोजक प्रचंड ने समाजवादी क्रांति के आधार इलाका रुकुम पूर्व बनने का विश्वास व्यक्त किया। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415 # डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेपाल और भारत के बीच एक्सपोर्ट होने वाले सामान के आने से पहले जानकारी शेयर करने का एक एग्रीमेंट हुआ है। आज नई दिल्ली में हुए एक प्रोग्राम में नेपाल की तरफ से भंसार विभाग के महानिर्देशक श्याम प्रसाद भंडारी और भारत की ओर से केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी ने साइन किए। मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी के मुताबिक बड़े ट्रेडिंग पार्टनर देशों के बीच एक्सपोर्ट होने वाले सामान के आने से पहले जानकारी शेयर करने का एक इंटरनेशनल तरीका है, ताकि सामान आने से पहले रिस्क मैनेजमेंट के जरिए ट्रेड को आसान बनाया जा सके। हस्ताक्षर कार्यक्रम में कस्टम डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल भंडारी ने इस बात पर जोर दिया कि एग्रीमेंट को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए और कहा कि इससे दोनों देशों के कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के बीच रिश्ते मजबूत होंगे। अध्यागमन विभाग के मुताबिक अमेरिका से 90 नेपाली नागरिकों को डिपोर्ट किया गया है। विभाग के महानिर्देशक जनरल रामचंद्र तिवारी ने बताया कि 90 डिपोर्टी काठमांडू पहुंच गए हैं। अमेरिका उन्हें चार्टर्ड प्लेन से काठमांडू लाया है। विभाग के महानिर्देशक तिवारी ने बताया कि अब तक अमेरिका से 400 से ज्यादा नेपालियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। डिपार्टमेंट के मुताबिक जिन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वे गैरकानूनी तरीके से रह रहे हैं और उन्होंने इमिग्रेशन कानूनों का उल्लंघन किया है। अभी पुलिस का ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो उनकी जांच कर रहा है और अगर उनकी ट्रैफिकिंग हुई तो ब्यूरो ने उनके शिकायत दर्ज कराने को कहा है। ब्यूरो ने कहा है कि जरूरी जांच के बाद परिवार को कस्टडी में ले लिया जाएगा। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय के सचिव लक्ष्मी कुमारी बसनेत ने कहा कि सभी का साथ, सहयोग और समन्वय से मंत्रालय के काम को परिणाममुखी बनाई जाएगी। आज मंत्रालय में पद बहाली के दौरान उन्होंने सेवा प्रवाह को नागरिक मैत्री, चुस्त और प्रभावकारी बनाने के लिए जिम्मेवारी पूर्वक कार्य संपादन करने का निर्देश किया। बता दें कि इससे पहले महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय में वे सचिव की जिम्मेवारी पर थीं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बुधवार को अमेरिका के खिलाफ अब तक की सबसे सीधी और कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यदि इस्लामिक गणराज्य पर दोबारा हमला हुआ तो वह अपने पास मौजूद हर ताकत से जवाब देगा। तेहरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के निर्ममतापूर्वक दमन के बाद बढ़ते तनाव के बीच अराघची ने यह बात कही है। इस दमन के चलते दोबारा दाबोस में विश्व आर्थिक मंच में उन्हें दिया गया निमंत्रण रद्द कर दिया गया है। यह घटनाक्रम ऐसे व्यक्त हुआ है जब अमेरिका के लड़ाकू विमान उपकरणों के साथ एशिया से पश्चिम एशिया की दिशा में बढ़ रहे हैं। वहीं कैरिबियाई क्षेत्र में अमेरिका की एक बड़ी सैन्य तैनाती के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लिए जाने के बीच पश्चिम एशिया में अमेरिकी लड़ाकू विमानों और अन्य सैन्य उपकरणों की गतिविधियां भी बढ़ती दिख रही है। अरागची ने चेतावनी दी है और कहा है कि दावा किया है अशांति का हिंसक चरण में 72 घंटे से भी कम समय तक चला। उन्होंने एक बार फिर हिंसा के लिए सशस्त्र प्रदर्शनकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अंतर्गत प्रत्यक्ष की ओर मनोनयन पत्र दर्ता किए गए 3487 उम्मीदवारों में से 5 लोगों के विरुद्ध उजूरी दर्ज। निर्वाचन में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ और विश्वासी बनाने के लिए केंद्रीय सुरक्षा समिति ने जिला सुरक्षा समिति को किया निर्देश। प्रत्यक्ष की ओर के उम्मीदवारी में महिला उम्मीदवारी 12% है, निर्वाचन आयोग द्वारा जानकारी। और अमेरिका ने के नए आक्रमण किया तो सभी सैन्य क्षमता से जवाबी कार्रवाई करने का ईरान ने दी चेतावनी। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।